मेरे नौजवान दोस्तों नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के बारे में कुछ भी बता पाना फिलहाल मेरे लिए संभव नहीं हो पा रहा है। देखते हैं कि कहां तक पहुंच पाते हैं। यदि पहुंच गए तो फिर एक विषय मेरे दिमाग में है, उस पर मैं बात करूंगा, और यदि नहीं पहुंच पाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो विषय महत्वपूर्ण है तो उस पर अपन कल बात कर लेंगे। तो आइए जो दूसरी खबरें हैं उन्हें थोड़ा देख लेते हैं। और आप लोगों ने एक बात गौर की होगी, पिछले 2-3 दिनों से बहुत सोच समझ करके मैंने ये कदम उठाया है कि मैं कुछ घटनाओं की जब चर्चा कर रहा हूं तो उनके आसपास की बातें भी आपके सामने रखता हूं। और ऐसा मैं इसलिए करता हूं क्योंकि आप ताकि समझ सकें कि ये जो फैक्ट है, यह जो घटना है या यह जो खबर है आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ आप इसका किस तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। देखिए, यदि आप चीजों का इस्तेमाल नहीं कर पाते, मान लीजिए कि मैं आपको सोने की सिल्ली दे दूं अरबों में जिसकी कीमत हो, लेकिन आपको अगर उसका इस्तेमाल करना नहीं आता है तो आपके लिए तो कुछ भी काम का नहीं। आप उसे टेबल बना करके उस पर किताबें रख करके पढ़ने लगी या खुद ही बैठ जाइए कुर्सी बना करके, आपके लिए तो किसी काम का नहीं हुआ। तो जो महत्वपूर्ण बात होती है वो ये कि हम कैसे किसी चीज का इस्तेमाल करना जानते हैं। और यूपीएससी इसी तरह के दिमाग की खोज करती है अपने इस एग्जामिनेशन के जरिए। प्लीज मेरी बात पर विश्वास करें, ये सामान्य किस्म की पढ़ाई नहीं है कि पढ़ लिया, रट लिया, सिलेबस देख लिया, नोट्स बना लिए और बात बन जाएगी। नॉट एट ऑल। तो दोस्तों आइए इस तरह की कुछ खबरें देखते हैं। भारतीय विज्ञान कांग्रेस की शुरुआत हो गई है, नागपुर में सम्मेलन हो रहा है। हमारे देश का बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन होता है। कल के दूरदर्शन न्यूज में आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने उसे संबोधित किया है, और प्रधानमंत्री जी का जो भाषण था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। लगा क्या, वो खासकर जब भी प्रधानमंत्री जी बोलते हैं तो और कुछ न सही, लेकिन भाषा की दृष्टि से तो मैं उन्हें बहुत ही गौर से सुनता ही सुनता हूं। और कुछ न सही कहने का मतलब ये नहीं कि मैं उनके कही गई बातों पर गौर नहीं करता। हमारे देश के उपप्रमुख हैं, सरकार की नीतियों के निर्धारक हैं, तो डेफिनेटली, और चूंकि मुझे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए आप सबको गाइड करना होता है तो मेरे लिए जो बातें कहते हैं, जो तथ्य हैं, वो भी कम इम्पॉर्टेंट नहीं होते। लेकिन तथ्य तो आपको अखबारों में भी पता लग सकते हैं, भाषा तो नहीं पता लगती ना। तो मैं भाषा के लिए जरूर उनके लेक्चर्स सुनता हूं। बहुत ही गजब का कंपोजिशन होता है। तो प्लीज आप लोग भी थोड़ा सा ऐसा करें, खासकर यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो। तो दोस्तों, खासकर ये जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस है इसको लेकर के मैं दो बातें केवल आपसे कहने जा रहा हूं। पहला यह कि इस बार का जो थीम है वो है महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये लंबे समय से इस पर लगातार बातें हो रही हैं। आप जानते भी हैं कि कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हम अपने साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज करें। अब आप देखिए कि जैसे कोयले से हम बिजली बनाते थे, पेट्रोल डीजल से हम बिजली बनाते थे, लेकिन अब टेक्नोलॉजी आ गई ना कि हम सूरज से भी बिजली बना सकते हैं, पानी से भी बिजली बना सकते हैं, हवा से भी बिजली बना सकते हैं, हाइड्रोकार्बन से बिजली, नए नए तौर तरीके आ रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कैसे हम अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसके संकट से हम गुजर ही रहे हैं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, तो ये तो बहुत ही पहले से चला आ रहा विषय है, लेकिन इस बार के विषय की खासियत है उसमें महिला सशक्तिकरण के साथ साथ, यानी कि जो विमेन एम्पावरमेंट है उसको इसमें रखा गया है। और प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में यह बात कही कि महिला सशक्तिकरण के लिए विज्ञान नहीं बल्कि विज्ञान में महिला, विज्ञान को सशक्त बनाने में महिलाओं का योगदान, इस पर भी उन्होंने जोर दिया। क्योंकि विमेन आपके सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जामिनेशन में जरूर एक न एक प्रश्न पूछा ही जाता है, स्पेशली मेंस में। तो मुझे लगता है कि अगर आप उसमें केवल इतना भर लिख दें कि इस बार तक का हमारा जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस हुआ उसके थीम में महिला सशक्तिकरण रखा गया, तो आप देखिए कि आपके उत्तर में कैसे एक चमक सी आ जाती है। दोस्तों, इस दौरान शोध के बारे में काफी बातें हुई हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि किस तरह से हम अब किस पोजीशन पर हम इंडेक्स में पहुंच गए। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि वैज्ञानिक प्रकाशन में अब हम विश्व में तीसरे स्थान पर आ गए, लेकिन शोध के लिए हम बहुत कम खर्च कर रहे हैं। इसको लेकर के बकायदे एडिटोरियल कमेंट्स भी लिखे गए हैं। मैं आपको दैनिक भास्कर का कमेंट, शोध पर हम कैसे बहुत कम खर्च कर पा रहे हैं जबकि दूसरे देश जो शोध में पहले से ही हमसे बहुत आगे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, हमसे ज्यादा खर्च कर रहे हैं। फिर हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं वो फर्स्ट 100 यूनिवर्सिटीज में स्थान ही नहीं बना पाते। तो ये सारे हमारी सीमाएं हैं जिन पर हमें गौर करना होगा। इसको लेकर के एडिटोरियल कमेंट्स आए हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप उन्हें ध्यान से पढ़ें और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लें। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन आए हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर। आपने बकायदे आज के अखबारों में पढ़ा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया है कि कोई भी मंत्री जब कोई बात कहता है, चाहे वो बेतुका बयान ही क्यों ना हो, तो उसे सरकार का बयान नहीं माना जाना चाहिए, वो उस व्यक्ति का बयान है और उस व्यक्ति को इस तरह की अभिव्यक्ति से रोका नहीं जा सकता क्योंकि ये उसका संवैधानिक अधिकार है। किन किन मामलों में रोका जा सकता है, इसका प्रोविजन बकायदे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। और कॉन्स्टिट्यूशन में जो मौलिक अधिकार है उसका जो 19(2), उसमें बकायदे ये सारी बातें बताई गई हैं। तो अब यह बकायदे पार्टी की जिम्मेदारी है या सरकार की जिम्मेदारी है कि वह अपने जो मंत्री हैं, अपने जो लीडर्स हैं, उनके बयानों को किस तरीके से रेगुलेट करते हैं। लेकिन यदि मंत्री बयान देता है तो उसे ऐसा करने से रोका नहीं जा सकता। हां, अगर उससे किसी को मानहानि हुई है, किसी की आस्था को चोट पहुंचती है, तो डेफिनेटली वो फिर मामला बनता है। और उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मंत्री जिम्मेदार है, वो व्यक्ति जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार नहीं है। ये बहुत स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है और मुझे लगता है, और इसको लेकर के एडिटोरियल कमेंट्स भी आज आए हैं, मैं एक एडिटोरियल कमेंट्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, दैनिक जागरण का है, वो ये है कि बहुत सही कहा गया है। इसलिए कि व्यक्ति और मंत्री, ठीक है, पद के हिसाब से वो अलग अलग हैं, लेकिन यह ठीक है कि पद पर एक व्यक्ति है लेकिन वो व्यक्ति भी है, और अगर यहां उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा तो निश्चित तौर पर आगे बढ़ते बढ़ते ये व्यक्ति की स्वतंत्रता तक हो सकता है कि प्रतिबंध लगाने वाला मामला बन जाए। लेकिन यहां फिर एक दूसरा प्रश्न उठता है जो हमारे संविधान से ही जुड़ा हुआ है, और वो प्रश्न ये उठता है कि सरकार में जो मंत्री होते हैं वो मंत्रिमंडल के सामूहिक दायित्व के सिद्धांत के अनुसार काम करते हैं। आप जानते हैं कि सब एक ही नाव में तैर रहे होते हैं। अब ऐसे में अगर कोई मंत्री बेतुका बयान देता है तो डेफिनेटली ये वो आप यूं कह लीजिए अपने कर्तव्य का सही तरीके से निर्वहन वो नहीं कर पा रहा है। सरकार की इसमें विचित्र सी स्थिति होती है, और चूंकि वो मंत्री है, एक महत्वपूर्ण पद पर है, तो वो जो बात कहेगा वो जनता को ज्यादा प्रभावित करेगा, चाहे वो सकारात्मक रूप में प्रभावित करे या नकारात्मक रूप में प्रभावित करे। चूंकि वह मंत्री है और मंत्री कोई बात कह रहा है तो मीडिया भी उसे अपेक्षाकृत अधिक महत्व देगा। तो ऐसी स्थिति में मंत्री को दायित्व से बिल्कुल मुक्त कर देना भी, सरकार के दायित्व से बिल्कुल मुक्त कर देना भी थोड़ा सा सही नहीं मालूम पड़ता है। तो फिर सवाल उठता है कि इसका इलाज क्या है। इलाज के रूप में आप जाएंगे तो यही कहा जाएगा कि भाई जो राजनीतिक दल हैं वो अपने अपनी आचार संहिता बना या सब मिलकर के अपनी आचार संहिता बना ले। लेकिन सवाल फिर से यही उठता है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, क्या ऐसा हो सकना संभव है? क्योंकि मीडिया के लिए भी यही कहा जाता है कि मीडिया अपनी आचार संहिता बनाए, लेकिन आप देखिए कि मीडिया क्या ऐसा कर पाए हैं, तो क्या राजनीतिक दल ऐसा कर पाएंगे? तो दोस्तों, मामला तो बड़ा मजेदार है और डिबेटेबल भी है, और चूंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है, मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ है, तो आप ये मान करके चलिए कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन काफी महत्वपूर्ण है। ठीक इसी तरीके से एक और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, वो खासकर जो हमारे आजकल जो सिनेमाघर हो गए हैं, जो मल्टीप्लेक्स अच्छे अच्छे सिनेमाघर हैं, आपका ये अनुभव रहा होगा कि जब आप सिनेमाघर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो बकायदे आपकी चेकिंग होती है, आप खाने पीने की कोई सामग्री उनके अंदर नहीं ले जा सकते, और अगर आपको अब कुछ खाना पीना है तो बहुत महंगी महंगी चीजें मिलती हैं। चीजें महंगी नहीं होती, सस्ती चीजें होती, लेकिन वो बहुत महंगे दर पर मिलती हैं। आपको कॉर्नफ्लेक्स खाना है तो पता लगा कि 200 रुपए का है, सिंपल सी चीजें। आपको कॉफी पीनी है तो पता लगा कि वो 100-125 रुपए की है। तो अब इसको लेकर के बकायदे एक जनहित याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट में जब दायर की गई जम्मू कश्मीर के, तो उसने साफ तौर पर कह दिया कि नहीं, ये लोगों के मौलिक अधिकार का हनन है। लोगों को सिनेमा हॉल के अंदर ये सब खाने पीने की चीजें ले जाने की छूट होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे टर्न डाउन कर दिया और कहा कि नहीं, जो सिनेमा हॉल है, अब ध्यान से सुनिएगा कि जो सिनेमा हॉल है वो एक निजी संपत्ति है, वो व्यावसायिक परिसर है, और निजी संपत्ति के मामले में कानून, नियम कानून बनाने का, कानून तो नहीं कहना चाहिए, नियम बनाने का पूरा अधिकार बकायदे उस निजी संपत्ति के मालिक को है। अगर आप वहां नहीं जाना चाहते तो मत जाइए, वो आपको बाध्य नहीं कर रहे हैं, और आप वहीं सिनेमा देखिए। और दूसरी बात है कि वो सामान आपको खरीदने के लिए भी बाध्य नहीं कर रहे हैं कि अगर आप सिनेमा देखने जाते हैं तो आपको एक न एक सामान तो खरीदना ही होगा, आप मत ले जाइए, मत खाइए, मत वहां जाइए। तो ऐसे में उन्हें ये कहना कि नहीं, लोगों को यह अधिकार होना चाहिए कि वो अंदर ले जाकर के कुछ भी खा सकें, तो ये गलत है। फिर उन्होंने एक प्रश्न भी उठाया, बहुत अच्छे उदाहरण दिए कि मान लीजिए कि आप जलेबी ले जाते हैं, जलेबी आपने खाया और इसके बाद आपके हाथ गंदे हो गए, तो वहां आपने सीट पे पोंछ दिया, अब उसकी सफाई कौन करेगा। नॉनवेज के बारे में उन्होंने कहा कि आप नॉनवेज ले जाते हैं, अंदर खाते हैं और हड्डियां और दूसरी चीजें वहीं आप छोड़ करके आते हैं, तो साफ सफाई का खर्चा कौन देगा। हाँ, उन्होंने एक बात जरूर कही कि जो बच्चे अगर छोटे हैं तो उनके पेरेंट्स को ये अधिकार होना चाहिए, है उनको ये अधिकार कि जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चे के लिए खाने पीने का सामान ले जाएं और साथ ही अंदर पीने का पानी फ्री अवेलेबल कराएं। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि यह भी एक डिसीजन है जो काफी महत्वपूर्ण डिसीजन है। वैसे भी आप बहुत से रेस्टोरेंट में आप चले जाइए, जो होटल होते हैं वहां बकायदे लिखा होता है कि यह बाहर से लाई हुई सामग्री आप उपयोग में नहीं कर सकते, खाद्य पदार्थ नहीं ला सकते। तो यह भी लगभग उसी तरह का मामला है। तो अब आप इस जो दोनों डिसीजन मैंने आपको बताए हैं, प्लीज आप इन डिसीजन के बारे में अपनी ओर से सोचिए, इन पर खुद भी आप विचार कीजिए कि आपकी अपनी राय क्या है, तभी तो आपका दिमाग एक्टिवेट होगा। आपको अपनी राय इस पर कुछ न कुछ कायम करनी ही चाहिए, चाहे पक्ष में या विपक्ष में। और जब दोनों तरफ आप कोई राय कायम करते हैं तो उसमें कुछ जोड़ने की कोशिश कीजिए, ये नहीं कि जो मैंने बता दिया है बस आपने उसी को मान लिया, पढ़ लिया, उसी को अपनी राय बना ली। ज्यादातर हमारी राय तो वही राय होती ही है क्योंकि हमारे दिमाग में इतनी ज्यादा क्षमता नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर हम उसे कुरेदेंगे ना तो कुछ ना कुछ वो निकाल करके आपको दे देगा। तो दोस्तों, चूंकि अब वक्त नहीं है तो आज बस इतना ही। न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। हमारी जो ऑफलाइन क्लासेज हैं 26 अक्टूबर से शुरू होकर के 9 नवंबर तक चलने वाली हैं, उसके लिए दीपा तिवारी ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिनका गांव है महुआ मुकुंदपुर, जिला वैशाली, बिहार से। तो दीपा जी, आपका एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से मैं हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं। मुझे एक मेल मिला है वंदना वर्मा का, जो हमारे 13th बैच की स्टूडेंट रही हैं, उनको एक बहुत अच्छी जगह से अपॉइंटमेंट लेटर मिला है। तो वंदना जी, आपके इस सफलता के लिए मैं एकेडमी की पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से बहुत बहुत और बहुत बधाई देता हूं, और भी बेहतर सफलताओं के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। ईमेल लिखने वाले जो दूसरे मित्र हैं, वो है नामिका डे आसनसोल वेस्ट बंगाल से, सतेंद्र प्रयागराज से और सजल जैन, आप सबका भी बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।